नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदराज और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। भारत ने भूकंप प्रभावित वानुआतू को राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता की घोषणा की। गणतंत्र दिवस परेड 2025 और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री शुरू। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में आज सुरमा हॉकी क्लब का मुकाबला यूपी रुद्रास से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में दूरदराज और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में पंचमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा है कि इन प्रयासों से निश्चित रूप से जीवन सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और तीव्र प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने विशेष रूप से गढ़चिरौली और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को बधाई दी है। इन क्षेत्रों में कल 11 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। श्री फडणवीस ने कहा है कि अधिक संख्या और माओवादी के हथियार डालने के कारण नए लोगों को अपने गिरोह में शामिल करने में उनकी विफलता को देखते हुए महाराष्ट्र जल्द ही नक्सली समस्या की मुक्ति की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने जिले में वांगतुरी वारदेगोदा गट्टा अहेरी मार्ग पर महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की 32 किलोमीटर लंबी गट्टा गर्देवदा वांगतुरी सड़क का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC ने छोटे व्यापारियों के सशक्तिकरण और ई कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि विकास और खुशहाली बढ़ाने में ONDC महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ONDC ने पिछले 3 वर्षों में असंख्य उपलब्धियां हासिल की है और व्यापारियों और विशेष रूप से लघु उद्यमियों के सशक्तिकरण में मदद की है। प्रधानमंत्री कल दिल्ली में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे राष्ट्रीय राजधानी के अशोक विहार में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के निवासियों के लिए करीब 1,700 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। श्री मोदी शहर में 2 नगर पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू दी एजेस पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस पुस्तक को 60 खंडों में प्रस्तुत किया गया है और इसमें 3,000 वर्षों से अधिक के इतिहास का संकलन दर्शाया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के कल्याण पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इस दिशा में राज्यों से केंद्र के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि इन लोगों के पास उचित दस्तावेजों की कमी के कारण उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर किसानों के लिए लाभकारी केंद्र की योजनाओं को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर कहा है कि वे किसानों के हित में निर्णय लेने में विफल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद किसानों से किए वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करके किसानों को राहत देनी चाहिए। बिहार में नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली। पटना के राजभवन में आयोजित एक समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। उधर बिहार के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। भारत ने दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित वानुआतू में 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है। 17 नवंबर को दक्षिण प्रशांत महासागर में वानुआतू तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे बड़ी तबाही और जानमाल की हानि हुई थी। भारत ने इस आपदा से हुए नुकसान के लिए वानुआतू सरकार और लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और संकट के इस समय में हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश में चट्टोग्राम की एक अदालत ने आज चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत खारिज कर दी है। बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण चोट के प्रवक्ता और स्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्णदास को पिछले वर्ष 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस समय वे जेल में हैं। भारत के गृह मंत्रालय ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त करते हुए बांग्लादेश सरकार से कहा है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ब्रिटेन के सांसदों ने भी चिन्मय दास की गिरफ्तारी और बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है। दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास में अपनी एमएनएसटी सुविधा के सफल संचालन की घोषणा की है। ये सुविधा 1 सितंबर 2024 को शुरू की गई थी। वाणिज्य दूतावास और अल अवीर के केंद्रों के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में नियमित वीजा प्राप्त करने के इच्छुक 15,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को व्यापक सहायता प्रदान की गई है। भारत ने म्यांमार के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है। बाड़ के समानांतर सड़क बनाने का काम अभी चल रहा है। मणिपुर के मोरेह में बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया है। भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर में रेलवे सुरक्षा आयुक्त इस महीने की 7 और 8 तारीख को कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क पूरा करने के प्रयास के हिस्से के रूप में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क के अंतर्गत कटारा रियासी खंड का अंतिम निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू रेलवे डिवीजन के इस महीने की 6 तारीख को नई दिल्ली से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली एनसीआर में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार से सेंट्रल विस्टा को मेट्रो लाइन के माध्यम से जोड़ने का अनुरोध किया है जो यात्रियों की सेवा कर सके और यातायात की भीड़ को भी कम कर सके। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों और 2 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दक्षिणी दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार जैन ने बताया है कि पिछले 1 महीने में 12 बांग्लादेशियों को निर्वासित किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। पंजाब में पुलिस की साइबर अपराध डिवीजन हेल्पलाइन पर वर्ष 2024 के दौरान वित्तीय धोखाधड़ी की 35,000 शिकायतें मिली। इनमें 476 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं। यूरोपीय देश मोंटेग्रो में एक बंदूकधारी ने कल दक्षिणी शहर सेंटिनेज में गोलीबारी कर 10 लोगों को मार दिया। यह हमला स्थानीय समयानुसार शाम 5:30 बजे बाजिफ गांव में शुरू हुआ। मरने वालों में 10 और 13 वर्ष के 2 बच्चे भी शामिल हैं। हमलावर को पकड़ने के लिए तलाश अभियान के दौरान 45 वर्षीय एक संदिग्ध ने पुलिस से घिर जाने के बाद स्वयं को गोली मार ली थी। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि टिकट सेना भवन, राष्ट्रीय भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदी जा सकती है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमालय की तराई पर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल तक ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है। और हॉकी इंडिया लीग में आज ओडिशा के राउरकेला में सुरमा हॉकी क्लब का मुकाबला यूपी रुद्रास से होगा। यह मैच बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में 8:15 बजे शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।